ओम शांति। आज हमारे बीच रिस्पेक्टेड डिवाइन ब्रदर डॉक्टर प्रेम बसन जी उपस्थित है। आप रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है। इंदौर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद पिछले 30 सालों से इस संस्था के अंदर सेवाओं में कार्यरत है। हमारी जो हॉस्पिटल है माउंट आबू में, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, उसमें रेडिएशन कंसल्टेंट के रूप में ऑनररी सेवाएं प्रदान करते हैं। और साथ साथ उनकी एक विशेषता है, 8000 के ऊपर उन्होंने अपने लेक्चर्स प्रदान किए हैं विभिन्न कॉरपोरेट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं। साथ साथ मेडिकल विंग के आप जॉइंट सेक्रेटरी भी हो। आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती हमारे बीच में अति व्यस्त होते हुए भी अपना अमूल्य समय निकालकर अंडरस्टैंडिंग द कोर ऑफ हैप्पीनेस इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। तो हम सभी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, हम सभी करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। साथ साथ इनके साथ एक बहन है स्वाति राव, जो मास्टर इन लिटरेचर है और गूगल मैप्स के लिए अपनी सेवाएं दे रही है, तो वो भी साथ साथ हमें इस लेक्चर का लाभ देंगी। ओम शांति। रिस्पेक्टेड डिवाइन ब्रदर डॉक्टर प्रेम बसन जी,
गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस सेशन। टॉपिक है हम अपने अंदर की खुशी को, हैप्पीनेस को कैसे पहचाने और रीडिफाइन करें और लाइफ में उसका यूज करें। लाइफ एक गेम है और इस गेम में हर एक को अपना अपना अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। लाइफ जहां तक देखें हर एक के लिए अलग अलग है, हर कोई अपने हिसाब से जीता है और वो उसका पैटर्न रहता है, वो उसका कोर रहता है और वो अपने वे में करेक्ट रहता है। तो जहां तक है रॉन्ग राइट, वो बड़ा एक क्वेश्चन है। जहां तक मैंने देखा, मेडिकली हम देखते हैं फैक्टर जो काम करते हैं लाइफ को गवर्न करने के लिए, वो है दो, वरी एंड हैप्पीनेस। या तो हम चिंता करते हैं या खुश रहते हैं। दूसरा है पेन एंड प्लेजर, दर्द और प्लेजर। तीसरा है लव एंड फियर। अब ये दो मेन इमोशन रहते हैं जो पूरे लाइफ को गवर्न करते हैं। अगर देखा जाए लाइफ इन दो फैक्टर से ही मोटिवेट होती है। अगर फियर है, डर है, तो हम रुक जाते हैं, थोड़ा पूरा गेम को प्ले नहीं करते हैं, कहीं कहीं प्ले करते हैं। और अगर हम अपने को अच्छी तरह जानते हैं, प्यार करते हैं, तो गेम को 100% प्ले करते हैं। और इसी के कारण मैं कहूंगा ये दोनों व्हील एक साथ चलते रहते हैं। अब हैप्पीनेस का अर्थ ये भी नहीं कि हम कभी दुखी नहीं हो, अनहैप्पी नहीं हो, होते हैं, एक नॉर्मल है। अगर हर समय हम खुश रहें, हैप्पी रहें, तो लोगों को डाउट हो जाएगा कि क्या गड़बड़ है। अगर आप चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखा रहे हैं, हंसते रहते हैं, तो लोगों में एक फैक्टर आ जाएगा, जलसी आ जाएगी। इसलिए कभी कभी क्या करना चाहिए, मैं अपनी बहनों को भी कहता हूं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा चेहरा डाउन कर लेना चाहिए, तो लोग समझें ये हमारे जैसा ही है, नहीं तो कुछ टांग खींचना चालू कर देंगे कि ये इतना खुश क्यों है। तो इंथुजियाज्म एक फैक्टर है। हैप्पीनेस कहां से आती है? जब हमारे में उमंग उत्साह रहता है, इंथुजियाज्म रहता है। इसीलिए इंथुजियाज्म को कहा गया इंथोस, इनसाइट, जॉय इनसाइट, खुशी हमारे अंदर है। अब खुशी उसी को मिलती है जो अपने अंदर खोजता है, जो अपने अंदर पेनिट्रेट करता है। जैसे कोलंबस ने वर्ल्ड में घूमा और अलग अलग जगह को खोजा, तो लाइफ में भी यही होता है। जब हम अपना खुद का कोलंबस बनकर खुद के अंदर जाकर उस खुशी को बाहर लाते हैं, जब तक वो पेनिट्रेट नहीं करेंगे तब तक हम वहीं का वहीं स्लो चलते रहेंगे। इसीलिए पेनिट्रेट करना बहुत जरूरी है। एक स्टोरी से शुरू करते हैं। आज मेरे साथ स्वाति है, तो एक स्टोरी पहला सुनाएंगी और आपको सुनना है और इंटरैक्ट करना है, अच्छी तरह सुनना और हम पूछेंगे।
ओम शांति। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि कई मेन इंग्रेडिएंट्स हमारे लाइफ के हमारे अंदर ही है, लेकिन हमें नहीं पता है। तो इसी बात से मुझे एक कहानी याद आता है। अफ्रीका के एक गांव में एक किसान था, बहुत खुश था अपनी जिंदगी से, क्योंकि वो बहुत कंटेंटेड रहता था। हर अपने फैमिली के साथ अपना घर गृहस्थी बहुत ही कूल और पीसफुल चल रहा था। अचानक एक दिन उसके घर पे एक बुजुर्ग व्यक्ति आए और बोले कि अगर कोई इस दुनिया में एक थंब उतना डायमंड खोज के ढूंढ निकाले तो वो पूरे शहर को खरीद सकता है, और अगर कोई व्यक्ति अपने मुट्ठी भर उतना डायमंड खोज निकाले तो वो पूरे देश को खरीद सकता है। बस इतने से दो पॉइंट्स को बोल के वो बुजुर्ग व्यक्ति चले गए, अपना काम करके वो वहां से चले गए। लेकिन अब डायमंड चीज सुनते ही इंसान की नींद ओम शांति हो जाती है। रात को नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, बिल्कुल बंद हो गया। रात भर सोचता ही रहा क्या करूं। अगले दिन सुबह वो सोचा कि मैं सब कुछ बेच के अपने परिवार वालों को एक जगह सेट करके अपना जमीन सब बेच के वो खोज के लिए निकला। किसकी खोज में? डायमंड्स की खोज में। तो सबसे पहले वो अपने देश में भ्रमण करा, अफ्रीका में कोने कोने में गया, ढूंढा कहीं डायमंड मिल जाए, लेकिन नहीं मिला उसको। फिर उसने सोचा प्रोबेबली यूरोप में मिल सकता है, क्योंकि यूरोप इतना बड़ा है। ऑल ओवर द यूरोप वो घूमा, फिर भी उसको नहीं मिला। फिर भी वो लास्ट मोमेंट तक अपना हिम्मत रखा, फिर वो गया स्पेन में जाकर भी ढूंढा, वहां पर भी उसको नहीं मिला। तीन जगह, इतने बड़े बड़े जगह घूमने के बावजूद भी उसको डायमंड्स नहीं मिले। फाइनली इतने प्रयास करने के बाद इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि वो बंदा डिसहार्टेड होके सुसाइड कर लिया। पीछे उसके घर पे जिसको उसने जमीन बेचा था, वो किसान ऐसे ही अपने खेत पे पानी डाल रहा था। अचानक से उसके नजर में पड़ा कुछ चीज चमक रहा है उसके खेत में। तो वो सोचा कि क्या है, तो पूरा खुदाई करके वो देखा कि बहुत प्यारे प्यारे डायमंड्स, स्टोन्स जैसे बड़े बड़े शेपलेस चमक रहे थे। वो एकदम खुश हो गया, अरे वाह, ये तो जमीन बड़ा लकी निकला मेरे लिए। वो क्या किया, उन डायमंड्स को लेके अपने घर पे सजाने के लिए रख लिया। ऑब्वियसली डायमंड्स को देखते ही हम सजाने के पहला सोचते हैं, सजाने के लिए रख दिया। उसके कुछ दिनों बाद वही बुजुर्ग व्यक्ति फिर वापस आया उसके घर पे, और इस खुशी से आया कि जिस किसान को मैंने बोला था डायमंड्स ढूंढ निकालने के लिए, वो ढूंढ लिया करके। तो वो बोला, हफीज तुमने डायमंड ढूंढ निकाला। तो जो किसान जिससे खरीदा था उसने तो कहा कि यहाँ पे हफीज नहीं रहता है, हफीज ने ये जमीन मुझे बेच दिया है। तब वो बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो डायमंड्स आपको कहां से मिले। तो वो किसान जाके दिखाया, ये चमकीले पत्थर मुझे यहां से मिले। तो वो चमकीले पत्थर को देख के वो बुजुर्ग व्यक्ति एकदम शॉक हो गया। तो मैं अब आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूं या आपसे जानना चाहती हूं कि आपको इससे क्या समझ में आया, लाइक व्हाट डू यू गेन द मॉरल इन दिस, बताएंगे?
हाँ, अब आप इंटरेक्ट करें।
अब आपकी बारी।
पूरी स्टोरी का मैसेज क्या है? खुशी अंदर है, लिख
के। I'll do one thing. I'll just note it down. That would be easy.
खुशी अंदर है और हाँ अंदर ही है। अच्छा, सेकंड आंसर भी अंदर है और दूसरे के प्रभाव में नहीं आना। वेरी गुड, समथिंग डिफरेंट। Do not come under the effect of other. ठीक है, very good, beautiful. प्रयास अपने से करना चाहिए, effort should start from us. Very good. हाँ वो आ गया। हाँ वो आ गया। Influence हो गया। हाँ, अपना सोचो तब बाहर निकले। कंटेनमेंट। अच्छा, कंटेनमेंट का भी एक बॉर्डर है। अगर हम कंटेंट हो जाएं बिल्कुल ही, तो लोग कहेंगे कि कुछ कर नहीं रहा है। अब उसका एक बॉर्डर रहता है, कहां तक जाना है कहां तक नहीं जाना है, वो दूसरी स्टोरी में आएगा। हम लालच, चलो लिख लो ग्रीड। हाँ, हार नहीं मानना चाहिए थी, उसने सुसाइड कर लिया। गुड गुड। तो टोटल मैसेज ये आया जो स्वाति बहन ने सुनाया कि ये भी ठीक है, भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता, उसका पार्ट होगा इतना ही। तो पहला कोशिश, एफर्ट, हमें खुद को वहीं रहकर पहले करना है कि कहीं जहां मैं पैदा हुआ हूं, जिस जगह पर मैंने जन्म लिया है, परमात्मा ने जहां मुझे भेजा है, वहां कुछ तो बात होगी, तभी मेरे को वहां पैदा किया है। तो पहले वहां एक्सप्लोर कर लें, और अगर वहां लग रहा है कि सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेट है कि मैं ट्राई करूंगा, दूसरी जगह भी जाऊंगा। ब्यूटीफुल, वेरी गुड, थैंक यू। अब दूसरी स्टोरी करते हैं। मैं सिंपल करके दे रहा हूं।
स्टोरी से एक ऐसी चीज है जो आसानी से जिंदगी भर के लिए याद रहता है। तो द सेकेंड स्टोरी इज कि एक यंग मैन रहता, एक यंग जेंटलमैन, वो एक ओल्ड मास्टर के पास जाता है, एक मॉन्क के पास, और बोलता है कि मेरे ओल्ड मास्टर, मेरे पास बहुत तकलीफ है, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत पेन है मेरे अंदर। सो अब ओल्ड मास्टर है, मॉन्क है, तो ऑब्वियसली वो बहुत पीस होगा। तो ओल्ड मास्टर ने कहा, यंग जेंटलमैन, मैं जैसे जैसे आपको करने को बोलूं वैसे वैसे आप करिए। चूंकि वो यंग जेंटलमैन बहुत ही पेन में थे, तो ही वॉज रेडी टू डू वॉट एवर ही सेड टू डू। सो वो ओल्ड मास्टर ने कहा कि आप एक टेबल स्पून सॉल्ट लेके एक ग्लास पानी में उसको घोल दीजिए। सो ही डिड द सेम, एक ग्लास टेबल स्पून लिए एंड ग्लास में घोल दिए। फिर वो ओल्ड मास्टर ने कहा कि आप उस ग्लास पानी को, जो नमक वाला पानी है, उसको आप पी जाइए। सो जैसे ही वो यंग जेंटलमैन उस ग्लास में जो पानी है उसको पीने के लिए गए, ही वॉमिटेड। ऑब्वियसली इतना नमक वाला पानी कोई भी पिएगा तो उल्टी कर देगा। तब फिर वो ओल्ड मास्टर ने कहा कि द सेकेंड स्टेप वुड बी कि आप उतना ही क्वांटिटी का सॉल्ट लेके सामने जो लेक है वहां पे उसको डिसॉल्व कर दीजिए. सो ही डिड द सेम, 1 tablespoon ऑफ सॉल्ट एंड ही डिसॉल्वड इट. सो लेटर ऑन द जेंटलमैन वॉज टोटली कंफ्यूज्ड कि व्हाट इज द रेजोल्यूशन फॉर माय पेन. यहां पे ओल्ड मास्टर ने कहा कि द रेजोल्यूशन इज सॉल्ट इज योर पेन, सॉल्ट इज योर पेन एंड वाटर इज द रेजोल्यूशन. सो इट डिपेंड्स अपॉन मी इन विच साइज ऑफ कंटेनर डू आई डिसॉल्व द सॉल्ट. डू आई डिसॉल्व द सॉल्ट इन टू अ ग्लास ऑफ वाटर विच विल रिमेन द सेम, और विल आई डिसॉल्व द सॉल्ट इन टू अ लेक विच इज अ ह्यूज वाटर. सो दिस मीन्स द पेन रिमेन्स द सेम बट द कंटेनर विच वी यूज दैट मैटर्स अ लॉट. So, if we have a huge attitude, a broad attitude, then the pain which we have will completely come ho jayega.
So, message tha, jab problem aaye, situation aaye, usko hum broad angle se dekhen. Lake ka arth hai, hamari soch, hamare 5 senses, hamari atma enlarge ho jaye, और उसको वहीं टैकल करें, उसको डिसॉल्व करें. दर्द उतना ही था, पेन उतना ही था, पर पेन को जब हम बड़े रूप में देखते हैं तो वो पेन ज्यादा लगता है, और उसी दर्द को मैं कम कर देता हूं तो ज्यादा बिग में डिसॉल्व करता हूं तो वो कम महसूस होता है. मैं देखता हूं हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, सिस्टर्स इंजेक्शन लगाती है, वो भरती है इंजेक्शन, और मैं देखता हूं वो पहले से ही शुरू हो जाता है, बहुत दर्द होगा, अभी लगा नहीं है. इसीलिए सिस्टर कहती है एक छोटी सी सुई लगेगी जिससे कि उसका माइंड जीरो पर आ जाए कि कोई दर्द नहीं होगा. अब मैंने देखा इसमें अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, किसी को एकदम प्रिक से बहुत दर्द होता है और किसी को जीरो रहता है, क्योंकि उनका जो कंटेनर था लाइफ का वो बड़ा था. और हमें भी अपने को ट्रेन करना है, बच्चों को भी ट्रेन करना है कि हम अपने कंटेनर को, सेंसेस को, अपने सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह प्रोग्रामिंग करें. हमारे अंदर सॉफ्टवेयर है TEAM, TEAM, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स, मेमोरी. टी थॉट्स, ई इमोशंस, ए एटीट्यूड्स, एम मेमोरीज. ये सॉफ्टवेयर हमारे सभी के अंदर है. अगर सॉफ्टवेयर ठीक से काम कर रहा है, पावरफुल है, अपडेटेड है, तो हम प्रॉब्लम को ठीक से टैकल कर लेते हैं. जहां हमारा सॉफ्टवेयर कमजोर हो जाता है, उसको अपडेट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं. और आज हम देख रहे हैं चेंजेस, परिवर्तन फास्ट हो रहा है. अब कंप्यूटर का भी जमाना गया, टैबलेट का आ गया, लोग कंप्यूटर नहीं खरीद रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं. कल ही मैंने पढ़ा तो इतना फास्ट चेंज आ रहा है, और उस फास्ट चेंज में मेरे को अपना सॉफ्टवेयर भी अपडेट करना पड़ेगा. TEAM, अगर TEAM ठीक काम कर रहा है, M, तो हम किसी भी प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं. खड़े हो जाएं, अभी हम अपने सॉफ्टवेयर को ठीक करेंगे, हार्डवेयर को भी ठीक करेंगे. हां, जय हो. क्योंकि बॉडी और हमारा माइंड दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों ब्लेंड होते हैं, तो दोनों को ठीक रखना.
Thank you.
चार्ज हो गए, सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर गया और बॉडी भी डाउनलोड कर दिया। लेक में रखना है, प्रॉब्लम को नैरो डाउन नहीं करना है, प्रॉब्लम को हायर लेवल पर जाकर सॉल्व करना है। अरुणिमा सिन्हा एक वॉलीबॉल प्लेयर, नेशनल फुटबॉल प्लेयर, ट्रेन में आ रही थी 2 साल पहले। उसकी चेन कुछ लोगों ने छीनना चाहा, पर उसने रजिस्ट किया, उसको ट्रैक पर फेंक दिया और उसका एक पांव एम्पुटेट करना पड़ा। धीरे धीरे उसने अपने लाइफ को सेट किया, नया पांव सेट किया और मई मंथ में अभी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। प्रॉब्लम लेक, माउंटेन, उसने प्रॉब्लम को माउंटेन पर ले जाके खत्म कर दिया और अभी फोर्सेस में उसका सिलेक्शन भी हो गया। तो लाइफ में 10% एक्चुअली कुछ होता है, 90% हाउ वी रिएक्ट टू इट। 10% एक्चुअली हैपन, 90% हाउ वी रिएक्ट टू इट। वही मैच हारते हैं और जीतते हैं जो हम रिएक्ट करते हैं। अगर उसको हम ठीक कर लेते हैं तो काफी हद तक बॉडी को भी हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड लगा हुआ है किडनी के ऊपर, हार्ट है, लंग्स है और ग्लैंड है। जब कभी भी हम रिएक्ट करते हैं बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एड्रिनल आता है और वो एक्स्ट्रा अमाउंट बॉडी में डैमेज करता है। और वही रिएक्टिव रिस्पॉन्स को हम कैसे कम करें, दैट इज द आर्ट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स हाउ वी एक्ट एज पर सिचुएशन। और आज हम सभी देख रहे हैं सिचुएशन अलग अलग तरीके से आ रही है, ह्यूमन बिहेवियर एकदम चेंज हो गया है। आई विल से मेल्टिंग इकोनॉमी, मेल्टिंग एनवायरमेंट और अब हो रहा है मेल्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। अभी ठीक था, अभी सुसाइड कर लिया, अभी ठीक था, अभी सुसाइड कर लिया। क्या हुआ एक सेकंड में, एक मिनट में? बच्चे ने अभी पढ़ा था, रिजल्ट आया और कुछ उसके मार्क्स कम रह गए तो एकदम उसने सुसाइड कर लिया। और अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिप्रेशन और सुसाइड का बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में ये और कॉमन हो जाएगा, और इतना कॉमन हो जाएगा कि शायद हर घर में से एक व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाएगा अगर हमने अपने को एम्पावर नहीं किया, चेंज नहीं किया। अब आप देख रहे हैं पिक्चर, फैमिली है और पूरी फैमिली एक पलंग पर एंजॉय कर रही है, इवन एनिमल्स भी एंजॉय कर रहे हैं। क्या मैसेज है इसका? खुशी कहां है? खुशी कहां है? हमारे ऊपर ही है। अब फिर क्वेश्चन आता है, कंटेनमेंट है तो खुशी है, खुशी है तो कंटेनमेंट है। अब वो लेवल को हमें चेक करना पड़ता है, उस लेवल को कैसे आगे बढ़ाएं। खुशी गायब होने का पहला कारण, फर्स्ट रीजन, बहुत समय पहले ग्रीक के फिलोसोफर ने कहा था, इपिसीटस, उसने कहा था खुशी गायब होने का पहला कारण है हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग, पीपल, सिचुएशन, हमारा बॉडी लैंग्वेज ये रहता है। अब ये बॉडी लैंग्वेज क्या रहता है? यहां असर डालता है, और इसीलिए स्पॉन्डोलाइटिस कॉमन हो रहा है। स्पॉन्डोलाइटिस क्यों कॉमन हो रहा है और नी प्रॉब्लम क्यों कॉमन हो रहे हैं? 2000 के पहले नी सर्जरी हार्डली होती थी, अब 2000 के बाद, अब 2010 के बाद हर महीने एक नया हॉस्पिटल खुलता है, और वो काय का होता है? नी रिप्लेसमेंट का। अब इतना कॉमन हो गया है, एक नी को करा लो तो सेकंड फ्री कर देंगे। अब नी में क्या हो गया 2000 के पहले क्या था और अब क्यों हो गया? स्पॉन्डोलाइटिस अब क्यों कॉमन हो गई? क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होल्ड कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। पहला कारण बीमारी आने का रहता है, समवेयर वी आर होल्डिंग समथिंग इन अवर माइंड, और वो हमारे बॉडी के सिस्टम को कमजोर करती है। इसीलिए कहते हैं डिस ईज, डिस ईज। डिस ईज का अर्थ है ईज हैप्पीनेस है, डिस ईज है यानी अनहैप्पी हूं। कहीं ना कहीं मैं अपने आप से खुश नहीं हूं, तब बीमारी आती है। फ्रस्ट्रेशन कब आता है? दूसरों को गुस्सा कब करते हैं, दूसरे को कब डांटते हैं? जब मैं अपने आप से खुश नहीं हूं। आयुर्वेदा में कहते हैं पांव गरम, पेट नरम, सिर ठंडा तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अब क्या हो गया? उल्टा हो गया। पांव हो गए हैं ठंडे, पेट हो गया है टाइट, और सिर हो गया है गरम हो गया है, इसलिए सब प्रॉब्लम शुरू हो गए। इसलिए एक डॉक्टर ने कहा आधी जिंदगी हम अपनी हेल्थ को खत्म करके पैसा कमाते हैं, अगली आधी जिंदगी उसी हेल्थ को लाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। क्यों नहीं हम शुरू से अपने को ठीक रखें और वो कंट्रोल करें जो हमारे हाथ में है, और जो हमारे हाथ में नहीं है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अभी मैं नीचे से आ रहा था, ऊपर काफी फॉगी था, रेनी था, मेरे को आना ही था, मेरे कंट्रोल में नहीं था वेदर, फॉग। अब मुझे क्या करना था? पहला प्लान था 8:30 को निकलेंगे, फिर जब फॉग देखा, प्रॉब्लम देखा, 8 बजे निकला है, आधा घंटा पहले पहुंच गए। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ता है उस समय मुझे क्या करना है। दूसरा, हाफ ऑफ द हार्म हम अपनी करते हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू फील इंपॉर्टेंट, मैं कुछ हूं। फिर वही बॉडी लैंग्वेज आती, मैं कुछ हूं। अभी आपने सुबह पहला लेसन क्या सीखा? पहला लेसन क्या था? नो नो योर सेल्फ। हां, क्या सीखा उसमें? सोल में क्या हूं? आई एम ए हैप्पी सोल, आई एम ए ह्यूमन बींग। मैं डॉक्टर बाद में हूं, इंजीनियर बाद में हूं, उसके पहले क्या हूं? उसके पहले मैं लाइट हूं, एनर्जी हूं। डायरेक्टर बाद में हूं, प्राइम मिनिस्टर बाद में हूं, पहले क्या हूं? प्राइम मिनिस्टर के पहले भी था, रिटायर्ड हूंगा वो तभी भी रहेगा, पर वो डिग्री हट जाएगी प्राइम मिनिस्टर की, फिर क्या रहेगी? एक्स प्राइम मिनिस्टर। फिर हम क्या हो जाते हैं? एक्स। पर हम क्या करते हैं? एक्स को भी पकड़ के रखते हैं, उसको भी पकड़ के रखते हैं। उस समय हम उसको ना पकड़ें, अपना इंपॉर्टेंस ना दिखाएं, और इसीलिए क्या करें? पहला लेसन का एप्लीकेशन है, क्या एप्लीकेशन है? फर्स्ट लेसन को अगर अप्लाई करूं लाइफ में, मैं इस ब्रह्मा कुमारी इसमें आया केवल फर्स्ट लेसन को समझकर, बाकी मेरे लिए इतना वो नहीं था। पहला लेसन मेरे को क्लियर हो गया, वो क्या था? मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं, मैं जो हूं जैसा हूं इस समय बहुत अच्छा हूं। पहला काम हमें करना है, जो पहला लेसन सिखा रहा है, सुबह उठकर अपने को प्यार करो, लव योर सेल्फ। मेडिटेशन का अर्थ ही है, सेकंड मीनिंग, लव योर सेल्फ, अपने को प्यार करो। हाँ, खड़े होए, देखें प्यार करते हैं कि नहीं। हाँ, खड़े होकर करें। हाँ, खड़े हो जाएं, हाथ ऊपर करें और अपनी पीठ थपथपा दें। ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल। हाँ, बोले, मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं, मैं अपने को प्यार करता हूं। देखो इल का अर्थ क्या होता, आई एल एल, इल का अर्थ क्या हुआ, आई लैक लव। बीमारी आने का दूसरा कारण, मैं प्यार ही नहीं करता, भाग रहा हूं भाग रहा हूं भाग रहा हूं। कहां भाग रहे सर? भाग रहा हूं। रोज अपने को सुबह उठकर प्यार करिए, शाबाशी दीजिए। आपको कोई नहीं दे रहा है शाबाशी, हम सबको चाहिए रहती है। कोई तो बोले अच्छा पहना है, क्या बढ़िया पहना है, कहां से लाए हो, पर कोई नहीं बोल रहा है तो टेंशन आ जाता है। तो क्या करें, खुद को खुद, हां सजदे, हम अभी क्या करेंगे, खुद को प्यार करेंगे धीरे धीरे। सज दिए, लव योर सेल्फ। पहला काम क्या करें, जनरेट करें, अपनी एनर्जी को जनरेट करें। रोज सुबह उठकर अपना एक्सरसाइज करके, वॉक करके, 40 मिनट्स वॉक करके बैठकर अपने आप से बात करें और अपने को बोलें, मेरे को जो मिला है बहुत अच्छा मिला है। काउंट योर ब्लेसिंग, जो मिला है उसको काउंट करें और खुश रहें। होता क्या है, जो नहीं है उसके बारे में हम चिंता बहुत करते हैं और जो है उसके बारे में चिंता नहीं करते हैं। और भगवान ने मेरे को बहुत दिया है, उसको मैं काउंट करूं। तीसरा, लोगों की सोच और मेरी सोच में कंफ्लिक्ट है। पीपल परसेप्शन एंड माई परसेप्शन इज नॉट मैचिंग, तब प्रॉब्लम आता है। और फिर हमने सीखा, किसी भी जगह अगर प्रॉब्लम 100% लें तो 10% प्रॉब्लम कहां से आते हैं? इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, इन एनी फैमिली, 10% प्रॉब्लम कहां से आते हैं? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मेरा ओपिनियन मैच नहीं कर रहा है बच्चे से, बॉस का ओपिनियन वर्कर के ओपिनियन से मैच नहीं कर रहा है, टकराव, कंफ्लिक्ट। और 90% कहां से आते हैं? 90% कहां से आते हैं? ये यहां से सर बता रहे हैं, बहुत अच्छा। यहां टोन को तेज कर दिया भगवान ने, वोकल कॉर्ड कहां लगाया, यहां लगाया। इसका डिस्टेंस यहां से और इसका डिस्टेंस हार्ट से इक्वल है, हेड हार्ट। तो जब बोलना है तो कैसे बोलना है, सोचकर बोलना है और प्यार से बोलना है। 90% प्रॉब्लम और मेजर किलिंग का कारण होता है कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने टोन को हाई कर दिया। एक अच्छा लीडर वो होता है जब वो आता है उसकी टोन को कमांड करता है, कहां कितना बोलना है, क्या बोलना है और कैसे बोलना है। और आजकल एडवाइस भी देना है तो सोच कर दो, अगर सामने वाली पार्टी को लेना है तब दो, नहीं तो मत दो। एंजॉय योरसेल्फ। हम क्या करते हैं, अनवांटेड एडवाइस एंट्री देते हैं और वहां प्रॉब्लम होता है। इसीलिए रिलेशनशिप में पहला पॉइंट रहता है दोनों पार्टनर की स्पेस को इंटरफियर मत करो। वाइफ की अपनी स्पेस है, हस्बैंड की अपनी है, वर्कर की अपनी है। उस स्पेस को इंटरफियर नहीं करेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जहां स्पेस को किया एंट्री तब प्रॉब्लम आता। चौथा, लोकस ऑफ कंट्रोल आउटसाइड। मैंने अपना स्विच दूसरों को दे दिया, अब दूसरे क्या करेंगे, रिमोट अपने हाथ में रखकर कहेंगे अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ। अभी ये बहन भी गई थी तो एक दो पूछ रहे थे कब आई, कहां से आई, क्या हुआ। स्विच अपने हाथ में रखो, कभी भी स्विच दूसरों के हाथ में नहीं दो। स्टोरी डन।
बहुत ही सुंदर बात कहा भाई जी ने। इसी बात पे एक बहुत ही मॉरल बेस्ड और बहुत ही लवफुल स्टोरी है। एक दिन एक व्यक्ति अपने गधे के साथ जाते रहता है। एक गधा रहता है वो अपने काम के लिए रखता है, बहुत बूढ़ा रहता है, बहुत बुजुर्ग हो जाता है गधा भी। तो एक छोटा सा होल जैसा रहता है, बड़ा सा खेत छेद जैसा, तो वहां जाके वो गधा बूढ़ा होता है तो वो गिर जाता है उसमें, क्योंकि वो जो होल होता है उसको वो खत्म कर बंद कर तोड़ना होता है उसको, क्योंकि वो जो होल रहता है वो बहुत ट्रबल करता है सोसाइटी वालों को। तो गधा अनजाने में वो जाके उस छेद में गिर जाता है। तो अब उस गधे को बाहर निकाले कैसे, निकालना कितना मुश्किल है। अब इंसान को तो निकाल खींच के निकाल सकते हैं लेकिन गधे को निकालना बहुत मुश्किल है। तो वो इंसान जो उसका मालिक होता है वो क्या सोचता है कि अब तो गधा भी बुढ़ा हो गया है, वैसे भी मरने का टाइम आ ही गया होगा गधे का, और उस छेद को भी वैसे भी बंद करना ही है, क्यों ना गधे को उसी में रहने दो और बंद कर दो करके मास्टर का जो मालिक होता है उसका मन में विचार ही चलता है। तो वो क्या करता है, अपने अड़ोस पड़ोस में जितने भी गांव वाले हैं उन सबको इकट्ठा करके वो उस छेद को बंद करने के लिए रेत डालते रहता है। वो गधा बेचारा अंदर रोते रहता है कि मेरे को कोई समझ नहीं रहा, उसको बाहर निकलना है, लेकिन मालिक का प्लान क्या होता है कि उसको उसी में दफना देने के लिए। तो पूरे नेबरहुड जो भी लोग होते हैं वो उसमें रेत डालते रहते हैं, तो गधे पे वो रेत गिरता है क्योंकि वो नीचे है। तो जितनी बार रेत डालते हैं आजू बाजू लोग जा डालते हैं तो वो अपने आप को शेक करता है, शेक करके सारी मिट्टी नीचे आ जाती है। करते 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 वो इस लेवल पे आता है कि वो मिट्टी इतनी ऊंची आ जाती है कि वो अपने आप बाहर निकल जाता है। दिस इज समथिंग दैट कोई अगर आपको अब्यूज करे, कोई आपको डिस्क्रिमिनेट करे या आपको डीमोटिवेट करे, उन सब को जस्ट शेक इट एंड जस्ट लीव इट।
शेक इट का अर्थ है हमें किसी की नेगेटिव बात को अपने अंदर नहीं रखना है। पॉजिटिव है रखो, पर नेगेटिव बात को अपने अंदर मत रखो और उसका लोड लेकर मत चलो। मैंने पहले भी कहा, हम सभी का मेजर प्रॉब्लम होता है हम लोड जल्दी ले लेते हैं और लोड को लेकर चलते रहते हैं और इसीलिए घुटनों का प्रॉब्लम फास्ट आ रहा है। लोड को क्या करना है, जब समय मिले लोड को लेट गो करना है, शेक ऑफ करना है। शेक ऑफ का अर्थ है मेरे काम की नहीं ये बात, छोड़ दो। जब मैंने उससे ली नहीं तो किसके हाथ में रहेगी, उसके हाथ में ही रहेगी। तो बीच बीच में अपनी स्कैनिंग करो, कहीं लोड तो लेकर नहीं चल रहा हूं। इसीलिए मंदिरों में क्या करते हैं, मंदिरों में जूता बाहर उतार कर आते हैं। बाहर उतार कर क्यों आते हैं, मैं अंदर जा रहा हूं, भगवान से मिलने जा रहा हूं, अपना सारा लोड उस जूते में रख रहा हूं, चप्पल में रख रहा हूं, तब मैं भगवान से मिल पाऊंगा। पर अंदर लोड लेकर आ गया तो क्या होगा, भगवान कहेगा इसका तो पूरा पेन ड्राइव फुल है, 4GB वाली, ये तो फुल है, इसको कहां से और दूं। तो कहेगा ठीक है, इसको बैठे रहने दो। जब मैं उसको डिलीट करके आऊंगा, नया स्पेस क्रिएट करूंगा, तब भगवान देगा। और खाली करना ही मेडिटेशन है। बुद्धा जैन मास्टर का पूरा मेडिटेशन इस पर डिपेंड करता है, एम्प्टी आउट, खाली करो, बार बार खाली करो। हम दिवाली पर खाली करते हैं, सब पुराना दे देते हैं, तब नया आता, तब लक्ष्मी कहती है आऊंगी। पर अगर हमने खाली नहीं किया तो लक्ष्मी भी रुक जाएगी, अभी इसका तो भरा हुआ है, अभी कहां अंदर जाऊं। तो इसीलिए बीच बीच में कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को खाली करें, इस मन रूपी कंप्यूटर को एम्प्टी आउट करें। साइलेंट में बैठे, कौन सा लोड मुझे तंग कर रहा है, और उसको खाली करें। इच्छाएं, पांचवां, इच्छाएं अच्छा नहीं बनने देती। अब डिजायर, इच्छा और ड्रीम में फर्क है। ड्रीम अलग है, विजन अलग है, इच्छाएं अलग है। डिजायर क्या होती है, बिना काम के हम वो चीज लेना चाहते हैं और मेरे काम की नहीं है, और उसको मैंने ले ली तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगी। जिस चीज को मैं यूज नहीं कर रहा हूं, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम देने वाली है। इसलिए लक्ष्मी को कैसा दिखाया, लक्ष्मी ऐसे खड़ी है, पैसा आ रहा है जा रहा है, करेंसी आ रही है जा रही है, लक्ष्मी भी कह रही है चलने दो। हम क्या करते हैं करेंसी को, सर क्या कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहा हूं। तो माइंड भी बॉडी को कहता है तू भी डिपॉजिट कर। तो हमारे जीन्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को पकड़कर कोरोनरी आर्टरी में डिपॉजिट करते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम ज्यादा है। फ्लो करने दे, जितना फ्लो करेंगे उतना और आएगा। लॉर्ड गौतम बुद्धा से पूछा, मुझे खुशी चाहिए, आई वॉन्ट हैप्पीनेस। लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा रिमूव आई, ईगो, एंड देन रिमूव वॉन्ट, डिजायर, देन यू विल गेट हैप्पीनेस नेचुरली। हैप्पीनेस हमारा प्रोडक्ट है और वो नेचुरल आता है। लोग क्रिएट किए गए क्योंकि पीपुल वेयर क्रिएटेड टू बी लव्ड एंड थिंग्स वेयर क्रिएटेड टू बी यूज्ड। अब क्या हो गया, उल्टा हो गया, पीपुल आर बीइंग यूज्ड एंड थिंग्स आर बीइंग लव्ड। इतना प्यार हो जाता है BMW से, उससे भी, बच्चे से भी ज्यादा प्यार हो जाता है। मोबाइल आज इतना प्यारा हो गया है, उससे अलग नहीं हो सकते, मैं देखता हूं ट्रेन में पहला काम देखते हैं चार्जर कहां है, चार्जर कहां है और उसको ढूंढेंगे। खुद के चार्जर को भूलकर हम दूसरा चार्जर करते हैं क्योंकि मोबाइल से प्यार हो गया है और उसका हम कहीं ना कहीं मिसयूज करते हैं। पहले लोग जब घर बार छोड़कर जाते थे अपना खाना अपनी फैमिली तो सेंट्स कहलाते थे, आजकल वो लोग एम्प्लॉयज कहलाते हैं। पास्ट हमारा लेसन है और फ्यूचर हमारा एप्लीकेशन है। हम इसको अपने लाइफ में इकट्ठा करें और बाद में इसका यूज करें। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, लव लिव लेट गो। हमने अपने को कितना प्यार किया और दूसरों को दिया, कितना हम फुली जिंदा रह रहे हैं और कितनी पुरानी बातों को लेट गो कर रहे हैं। हर दिन हमें गिफ्ट के रूप में मिल रहा है, हर दिन एक नया है, हर दिन हमें उस गिफ्ट को यूज करते जाना है। इसीलिए खुशी यात्रा के साथ है, यात्रा के अंत में नहीं है। हम क्या करते हैं, खुशी को पोस्टपोन करते हैं। जब मेरे पास ये आ जाएगा खुश होऊंगा, जब बच्चा पढ़ लिख लेगा तब खुश होऊंगा, जब उसकी शादी हो जाएगी तब खुश होऊंगा, जब उसका बच्चा हो जाएगा तब खुश होऊंगा, जब रिटायर्ड हो जाऊंगा तब खुश होऊंगा। तो हम खुशी को टालते रहते हैं, पोस्टपोन करते हैं, जबकि खुशी अभी इसी समय यहां पर है, यहीं पर है, घर के बाहर ही है। सनलाइट है, क्लाउड्स हैं, रेन्स हैं, पानी गिर रहा है, पानी को एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम आ रहे थे रास्ते में, एक कपल, यंग कपल, मोटर बाइक पर, मोटर बाइक को रोका और पूरा वो गीला हो गया था लड़का, उसने पूरी बनियान उतार कर पानी को निकाला, फिर डाला और फिर चल दिया। क्या किया उसने, एक खुशी से पानी को भी एंजॉय करते आगे बढ़ा। हर छोटी चीज में खुशी है और मेरे को जैसे खुशी लगती है जब मैं किसी को इंपावर करता हूं, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। स्वाति बहन भी एक वीक की छुट्टी पर आई फादर के पास, मेरे को मिली, मैंने कहा कल चलना ऊपर, और कल ही इवनिंग में इसको पूरा समझाया और अब मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। एम्पावर होकर, पावरफुल होकर बता रही है, वो खुशी हमारे अंदर तक जाती है। एम्पावरिंग अदर्स क्रिएट हैप्पीनेस। कोई भी छोटी मदद अगर आप किसी को करते हो, वो आपकी रियल हैप्पीनेस रहती है, रियल खुशी रहती है, वो आपके साथ चलती है। इसीलिए हेलन केलर ने कहा था, ज्यादातर चीजें हम फील कर सकते हैं, वो फील करना ही खुशी है। चाहे आंखें नहीं थी फिर भी वो फील करती थी, कई बुक्स लिखी, कई अवार्ड्स मिले, क्योंकि उसका फीलिंग सेंसेशन बड़ा अच्छा था। और जब कभी किसी को खुशी देना है, बच्चे को देना है, पेशेंट को देना है, उसको केवल प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना है। बच्चे को भी जब एग्जाम के समय जा रहा है, इंटरव्यू के लिए जा रहा है, फॉरेन जा रहा है, उस समय कुछ इंस्ट्रक्शन ना देकर उसको टच, आई एम विथ यू, आई लव यू, वो ताकत देता है और उसके कारण वो इमोशनली स्ट्रांग होता है। और यही स्टीव जॉब ने भी कहा था, उससे पूछा, ही डाइड ड्यू टू पैनक्रियाटिक कैंसर, एप्पल कंपनी को टॉप पर ले गया, उससे जब पूछा गया था जाने के पहले, हाउ यू वेंट टू द टॉप, तो अभी मूवी भी बन रही है, मूवी रिलीज होने वाली है, उसने कहा हर दिन मैं पूछता था अपने आप से, अगर आज का दिन आखिरी है तो मुझे क्या करना है? इफ टुडे इज माई लास्ट डे, वॉट आई एम गोइंग टू डू इट? इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, टुडे इज अ गुड डे, ग्रेट डे, लेट मी डू वॉट आई वॉन्ट। तो तब हमारा माइंड काम करता है। और दूसरा उसने कहा, जो कुछ कर रहे हो उसको प्यार से करो, लव इट, चाहे वो छोटा काम है, लव इट। जो काम प्यार से करेंगे हम टॉप पर जाएंगे। अब खुशी गायब होने का एक कारण यह भी रहता है, कहीं ना कहीं हम अपने अंदर की पोटेंशियल्स को यूज नहीं कर पा रहे हैं। मास्लो एक बहुत बड़ा अपने आप में साइकेट्रिस्ट रहा, कई किताबें लिखी, पूरी साइकोलॉजी सिगमंड फ्रायड और मास्लो ने लिखी थी। उसने कहा था, वर्ल्ड में जो भी अनईज है, अनहैप्पीनेस है, अनरेस्ट है, इट इज ड्यू टू व्हाट? उसका कारण क्या है? उसने बताया, जब हम अपने अंदर की शक्तियों का प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे को दिया गया है उसको बाहर नहीं ला पा रहे हैं, तब हमारे में ये तीनों चीजें आती है। और एक अच्छा लीडर वही होता है जो वो बाहर निकालता है। लीडर का काम यही है, जो वर्कर काम कर रहा है उसके अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकाले, और उसका जो खुशी है, पावर है, अलग ही है। जैसे अभी स्वाति बहन रिलीज कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है, उसकी खुशी एक अलग है। किसी ने पूछा मधुमक्खी से, तू रोज इतनी मेहनत करती है, हनी इकट्ठा करती है, लोग तेरे हनी को ले जाते हैं, तेरे को बुरा नहीं लगता? हनी ने कहा, ले जाते हैं, पर वो कभी भी ये नहीं जान पाएंगे मैं हनी को कैसे बनाती हूं, हनी कैसे क्रिएट करती हूं। तो मेरे को कोई डर नहीं। और ज्यादातर प्रॉब्लम ह्यूमन बिहेवियर का है, सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी, सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी। जहां इनसिक्योरिटी आई, दूसरे को रोकेगा, दूसरे की टांग पकड़ेगा कि कहीं ये मेरे से आगे नहीं बढ़ जाए। पर अगर मेरे में अंदर ताकत है तो मेरे को उस इनसिक्योरिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं आगे बढ़ूंगा। तो कभी भी अपने अंदर इनसिक्योरिटी ना लाए, डर नहीं लाए। जो कला मेरे को भगवान ने दी है वो यूनिक है, वो स्पेशल है, वो किसी के पास नहीं है, और उस कला को मेरे को आगे बढ़ाना है। फिर से खड़े हो जाएं। अब उस कला को देखेंगे हम और बाहर लाएंगे। मितवा, ये बहुत अच्छा गीत है। लास्ट टाइम अभी मैंने बिजनेस विंग में प्ले किया था, और वहां उस मूवी स्टार भी आई थी। वो कला हम सभी के अंदर है, हमें उसको बाहर निकालना है। और ये सॉन्ग उसी से कनेक्टेड है कि हम सब में वो कला है, उसको बाहर लाए।
आ जा रे भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थक न तेरा ये तन हो। आ जा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो। तू आ जा रे इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। वाजा रे Thank you. भाग्य दिए नैनन में, दिए हमरी आशाओं के कभी बुझ न पाए।
कभी आंधियां जो आके वो बुझाए।
ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, धरती अपनी है अपना अंबर है रे।
गुड। अपने अंदर के प्रोडक्ट को बाहर लाना इस कॉल मेडिटेशन। आप देख रहे हैं प्रीतेश खड़गपुर आईआईटी में एडमिट हुआ, ब्लाइंड बचपन से है, अभी गोल्ड मेडल लिया मैथमेटिक्स में। अब आप बताइए परसेप्शन कहां से आ रहा है? मेन विंडो बंद है, आईज सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है, कान सेकंड, थर्ड सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन ये देती है। अब वो विंडो बंद है तो कहां से परसीव कर रहा है? अपने मन से कर रहा है, परसीव कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव बंद है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है दो चीजें, आंखें धोखा खा गई, कहते हैं ना आंखें धोखा खा गई, जीभ स्लिप, टंग स्लिप हो गई, दो गड़बड़ करती हैं। आज के समय में यहां से ज्यादा बोल दिया तो रिजाइन करना पड़ता है। कई टॉप टेक्निकल पीपल दे हैव टू रिजाइन, वाई गड़बड़ कर गए। तो इसीलिए टंग हमारे कंट्रोल में रहे और आंखें हमारे कंट्रोल में रहे, यही मेडिटेशन है कि कहां इसको कितना कंट्रोल करना है, कहां मेरे को एक्सप्रेस करना है। और इन लोगों का परसेप्शन 100% हो जाता है क्योंकि दे आर नॉट एबल टू सी द नेगेटिविटी एनीवेयर। तो अंदर का माइंड काम करने लगता है और बेटर हो जाता है। ला नेक्स्ट, नॉन जजमेंटल। नॉन जजमेंटल का अर्थ है कि आप किसी भी व्यक्ति को अपनी आंखों से मत देखो, जज करो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, डू नॉट सी द थिंग्स एज यू आर, सी द थिंग एज दे आर। जो चीज जैसी है उसको वैसा देखो। कंफ्लिक्ट का एक और कारण होता है, हम बिना कारण से हर व्यक्ति को अपने आंखों से वे करते हैं, वैल्यू देते हैं, और उसमें कभी ना कभी धोखा खा जाते हैं। तो सुनते हैं स्टोरी स्वाति बहन से, कैसे नॉन जजमेंटल जजमेंटल में मिस्टेक होने पर मिस्टेक होती है।
एक बहुत ही स्वीट यंग कपल था, फिर हाल में ही वो एक न्यू फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। फिर उसके बाद उनके घर के सामने जो दूसरी फैमिली था, तो उनकी वाइफ डेली जब ब्रेकफास्ट करती थी तो डेली अपने हस्बैंड को कंप्लेन करती थी, छी देखो सामने वाले घर वाली को कपड़े धोना नहीं आता, कपड़े कितने मैले रहते हैं, बालकनी में जो कपड़े टंगे हुए रहते हैं, डेली कंप्लेन करती थी वो। ये सुन के उसका हस्बैंड गुलाम के जैसे जी जी करके बोलता रहता था। ऐसे बोल डेली वो एक महीने तक, डेढ़ महीने तक डेली बोलती थी, इसको कपड़े धोने नहीं आते, कितने मैले रहते हैं, मन करता है मैं खुद जाके कपड़े धो के आऊं, ये वो ये वो, कुछ ना कुछ बोलना ही था उसकी वाइफ को, डेली बोलती थी। फिर एक दो महीने के बाद शी सडनली फाइंड्स कि वो कपड़े एकदम साफ नजर आ रहे हैं। वो बहुत खुश हो जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि आज ऐसा चमत्कार कैसे हो गया, आज उसको धोने आ गए कपड़े, आज तो कपड़े चमक रहे हैं। क्या मैं जान सकती हूँ आप में से कोई बताएंगे कि क्या था वो रीजन जो अचानक से, जिन्होंने ये स्टोरी सुना है वो नहीं, जिनको जिन्होंने नहीं सुना है वो जवाब देंगे तो मजा आएगा।
अच्छा,
हस्बैंड ने जाके बोला होगा। गुड,
वेरी गुड आंसर।
और वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए, सर्फ एक्सेल से धोए होंगे। और
बोल दो, बोल दो।
कपड़े खुद धो के आया होगा, वाइफ की रोज सुन सुन के खुद जाके धो के आ गया होगा।
वेरी गुड,
गुड आंसर। चश्मा चश्मा बदल लिया होगा।
वेरी गुड।
सो द रीजन वॉज,
गुड आंसर।
सो द रीजन वॉज कि हस्बैंड ने बस अपने घर की खिड़की साफ कर दी थी, इतनी सी मेहनत करी थी।
पति ने क्या किया, सुबह उठकर खिड़की को साफ कर दिया और जब वो देखने आई साफ दिख रहे थे। तो गड़बड़ कहां थी, प्रॉब्लम कहां था, उस लेडी के अंदर ही था, क्योंकि वो बिना समझे सोचे एक्ट कर रही थी। हमें भी क्या करना है, सिचुएशन को देखकर, प्रॉब्लम को समझकर तब अपना कमेंट देना है, नहीं तो कभी ना कभी वो गलत हो जाता है। नेवर कॉम्पीट विथ अदर्स, कॉम्पीट विथ योर सेल्फ। कभी भी जीवन में किसी से कॉम्पीट नहीं करना है और अपने को इंप्रूव करना है। थ्री इडियट में भी क्या था, थ्री इडियट मूवी का भी क्या था मैसेज, दो मैसेज थे। पहला था ऑल इज वेल, सेकंड खुद को इंप्रूव करेंगे, खुद की क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, सब कुछ चल कर आएगा, जॉब चल कर आएगा। और ये मैंने अप्लाई करके देखा है, ये जब से फंडामेंटल मैंने सीखा तब से हर चीज नेचुरल हो रही है। खुद को मेरे को हर दिन इंप्रूव करना है, हर दिन मेरे को इंप्रूव करते जाना है। जापानीज का प्रिंसिपल था ICAN, ICAN काइजन, इसका अर्थ था इंप्रूवमेंट दैट इज कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग। हर दिन अपने को इंप्रूव करो, रात को देखो, चेक करो कहां गलती की, क्यों हुई, उसको करेक्ट करो। मेरे ख्याल से जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीज अगर लूं, दो ही है, एक अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना है और दूसरा रात को चेक करना है कहां गलत था, क्यों मैंने रिएक्ट किया, और उसको चेंज करो। चेक चेंज, चेक चेंज। और यही प्रिंसिपल के कारण जापानीज वेंट टू टॉप, क्योंकि वो हर चीज को प्लानिंग देते थे, करते थे और फिर करते थे और फिर इवेल्युएट करते थे कहां करना है। तो जब हम इवेल्युएट करना सीख लेते हैं, खुद का, खुद की स्कैनिंग करना आ जाती है, तो हमें पता लगता है वेयर वी आर वीक और उस वीकनेस को ताकत में बदलना है। हाउ टू कन्वर्ट वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ इज कॉल्ड मेडिटेशन। ताकत को, वीकनेस को आइडेंटिफाई करना और उसको कन्वर्ट कर देना, वो ही मेडिटेशन है। और वो तभी कर सकते हैं जब हम रोज अपने को देखते हैं। ये एक बहुत अच्छा ह्यूमर वे में किसी ने भेजा था, अगर आपको एक घंटे की खुशी चाहिए थोड़ा सो लो, नैप ले लो। अगर आपको एक वीक की छुट्टी, एक वीक की हैप्पीनेस चाहिए, पिकनिक पर जाओ। एक महीने की खुशी चाहिए, शादी कर लो। और अगर एक साल की छुट्टी खुशी चाहिए तो किसी से पैसा आपको मिला है वो खुशी देगा। पर परमानेंट खुशी चाहिए लाइफ में, तो जो आप कर रहे हो उसको प्यार से करो, तो वो काम आपको खुश देता रहेगा। चाहे 18 घंटे काम कर रहे हैं पर वो मुझे खुशी दे रहा है। खुशी आप और दे सकते हो एक सिंपल वर्ड का यूज करके, जो सबसे पावरफुल वर्ड है, अगर आप खुद को कहते हैं मैं अपने को प्यार करता हूं, और जो आपके बच्चे हैं, वाइफ है, उनको भी आप सपोर्ट करिए, अगर घर की पूरी टीम सपोर्ट में रहेगी तो वो अच्छी तरह काम में करेगी। और सिंपल शब्द है आई लव यू। ये किसी को भी जब हम बोलते हैं, फैमिली मेंबर्स को, छोटों को, तो एक उनमें अजीब ताकत आती है, पावरफुल वर्ड है, और उसकी कंजूसी हम ना करें। अगर घर से दूर हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, बात फोन पर करें, बोलें, कम्युनिकेट करें। जैसे शादी के 3 साल तो बहुत अच्छे जाते हैं, बाहर तक पत्नी छोड़ने आती है, 3 साल हो जाते हैं फिर क्या होता है, रोज ही जा रहा है, छोड़ दो। कंटिन्यूस उसको मेंटेन करें। यह देखा गया है जहां हस्बैंड और वाइफ में पॉजिटिव एक्सचेंज होता है, जब वो जाते हैं, दोनों जॉब पर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वो एक्सीडेंट कम होते हैं, हार्ट अटैक कम होते हैं। इसीलिए फॉरेन में क्या है कंपलसरी, इवन 65, 70, 80 ईयर्स में भी वो लोग दिन में तीन चार बार एक दूसरे को बोलते रहते हैं आई लव यू। अगर वहां नहीं बोले तो डाइवोर्स हो जाता है, तो वहां कंपलसरी है। पर यहां हम जब कम से कम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कुछ समय के लिए जा रहे हैं, एक बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट आता है गार्नर वालों का, क्या आता है, मैंने वहां से पिकअप किया। हम लोग जो चीज देखते हैं अपने काम की देखते हैं, पकड़ लेते हैं, उस एडवर्टाइजमेंट पे है अपना ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कितना अच्छा शब्द है। आप जा रहे हो और आपको बोला अपना ध्यान रखना, टेक केयर, कितना अच्छा लगता है। और उसकी कंजूसी ना करें, बच्चा जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, उसको बोलो अपना ध्यान रखना, टेक केयर, आई एम विथ यू, मैं तेरे साथ हूं। वो पावर देता है, इमोशनली साइकोलॉजिकली पावर देता है। और जब कोई काम करे आपके लिए, चाहे कोई भी करे, उसको जरूर बोलें थैंक यू। ये भी एक आपका रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है ह्यूमैनिटी के लिए। चाहे वो छोटा व्यक्ति है, आपके लिए उसने काम किया तो जरूर उसको बोलिए। अब आते हैं थोड़ा गहराई पर। 2 आदमी कार में है, एक ड्राइविंग कर रहा है, एक पास में है। सिग्नल के पास रेड लाइट होती है तो कार रोक देता है। दूसरा आदमी है जो बैठा हुआ है, बहुत गुस्से में कहता है, क्या लोगों को सर कुछ भी नहीं अकल है, सिग्नल बना दिए, अगर सिग्नल पे कितना टाइम वेस्ट होता है, इतना टाइम वेस्ट होता है कि एक किताब लिख सकते हैं। तो पड़ोस में जो ड्राइव कर रहा था, साइलेंट में बैठा था, ये गुस्से में बोलता है, मैं तेरे से बात कर रहा हूं, तू क्या कर रहा है, तू सुन नहीं रहा है, तो किससे बात कर रहा है। तो उसने कहा, मैं भगवान से बात कर रहा हूं, और जब कभी भी सिग्नल आता है, मैं भगवान से बात करके उस व्यक्ति को सामने लाता हूं जिसको कुछ तकलीफ है, मेरा दोस्त है, किसी का कुछ है, कहीं प्रॉब्लम आया है, मैं वहां उसको प्रे करके शक्ति देता हूं। तो टाइम वेस्ट नहीं हुआ। तो हम भी क्या करें, जब कभी भी एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, ट्रेन पर वेट कर रहे हैं, उस समय टाइम वेस्ट नहीं करके उस व्यक्ति को शक्ति दे जिसको चाहिए, उसको सामने लाएं, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत प्रेयर में है। अगर हम किसी के प्रेयर में हैं, वो सबसे बड़ा हमारा भाग्य है। और उस समय अगर उस आत्मा को सामने लाते हैं, प्रे करते हैं, शायद वो प्रे काम कर जाए और वो व्यक्ति ठीक हो जाए। बजाय मैंने देखा स्टेशन पर ज्यादातर क्या होता है, ट्रेन आने का टाइम 6 बजे है, 6:45 से ही लोग देखना चालू कर देते हैं, गाड़ी आई नहीं, अभी तक क्यों नहीं आई, अब उसका टाइम 6 बजे है, पर ज्यादातर बार बार आएंगे फिर देखेंगे गाड़ी नहीं आई, तो क्या कर रहे हैं 15 मिनट क्या कर रहे हैं? गाड़ी नहीं आई तो बॉडी क्या कर रही है? गाड़ी नहीं आई एड्रिनल गया। विदाउट एनी कॉज आई एम रिलीजिंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एड्रिनल। अब उस समय क्या करें? किसी के लिए प्रे करें, किसी को शक्ति दें, किसी से बात करें जिसको इसकी जरूरत है। नेक्स्ट है हमारे एटीट्यूड, दृष्टिकोण। हमारा दृष्टिकोण अगर अच्छा है, पावरफुल है, तो वो भी हमें खुशी देता है। अब आपको एक कहानी सुनाता हूं, क्योंकि ये मैंने दी नहीं थी स्टोरी। एक व्यक्ति बहुत अमीर है और उसका एक बच्चा है। अमीर फादर सोचता है बच्चे को एक दिन किसी गरीब के यहां भेजूं तो उसको पता लगेगा गरीबी क्या होती है। एक दिन बच्चा गया गांव में और गरीब के घर रहकर आया। सुबह आया, फादर ने पूछा, तुझे अब क्लियर हो गया होगा गरीबी क्या है? बच्चे ने कहा, जब मैंने देखा हमारे घर में स्विमिंग पूल इतना बड़ा है, उनके गांव में तो बहुत बड़ी नदी थी, हमारे घर में 2 कुत्ते हैं, उनके गांव में तो बहुत सारे कुत्ते घूम रहे थे। जब मैं आकाश के नीचे सोया, देखा बड़ी बड़ी लाइटें जल रही है, चंद्रमा, तारे, आज मुझे पता लगा कितना गरीब हूं मैं। तो ये क्या हुआ? एटीट्यूड के ऊपर है, दृष्टिकोण के ऊपर है कि क्या है। और आप देख रहे हैं जया, जिसने टॉप किया सीए के एग्जाम में इस साल, रिक्शा ड्राइवर की डॉटर है, कोई रिसोर्स नहीं, कुछ नहीं, अपनी पढ़ाई भी की, हेल्प भी किया और सीए के एग्जाम में टॉप किया। दृष्टिकोण के ऊपर है। अगर सोचती मैं तो रिक्शा ड्राइवर की डॉटर हूं, मैं तो ट्यूशन नहीं ले सकती, मैं ये नहीं कर सकती, पर उन सबको छोड़कर वो आगे बढ़ी और टॉप किया। तो दृष्टिकोण हमारा काम में आता है और वो हमें मदद करता है। इसीलिए कभी भी एंगर में आकर अपना ब्लड को हॉट नहीं करें। रॉड भी होती है, स्टील की रॉड, जब गर्म किया जाता है उसको मोल्ड किया जा सकता है। और जब हम गर्म हो जाते हैं तो हमारा भी मिसयूज होता है। तो इसीलिए स्टे कूल एंड बी स्ट्रांग। कूल तब रह सकते हैं जब हम साइलेंट में रहते हैं। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, साइलेंट एंड स्माइल, दोनों प्रॉब्लम को ठीक करती है। साइलेंस से हमारे प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं, स्माइल से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए जब प्रॉब्लम्स आए, साइलेंट में या स्माइल में रहकर उस प्रॉब्लम को ठीक करें। मुझे याद आ रहा है हमारी बड़ी दादी थी, दादी निर्मल शांता दादी, एक बार उनके सामने किचन में छोटी बहन दूध गर्म कर रही थी, दूध बॉइल होकर गिर पड़ा, बहने लगा। अब बहन ने सोचा बड़ी दादी क्या कहेंगी। बड़ी दादी ने बड़े कूल से कहा, मैंने तो सुना था सतयुग में घी दूध की नदियां बहती है, तूने तो कलयुग में ही बहा के दिखा दिया। तो ये क्या हुआ? एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहा और उसको सॉल्व किया। क्योंकि टाइम हो रहा है, लास्ट 5 मिनट्स है। HRR, ये फॉर्मूला है। पहला है हैप्पीनेस, इसको हम बनाए रखें, चाहे वो गायब होए, फिर से उसको लेकर आ जाएं। अपने मन को कहें, आजा, इस समय मैं यहां हूं, उसको पकड़कर यहां ले आए। दूसरा आर का मतलब है रेजिलेंस, यानी टफ। इमोशनली वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली आई हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। अंदर से मजबूत हूं, बाहर से सॉफ्ट, बाहर से इलास्टिक, पर अंदर से मजबूत हूं। अंदर से इतना मजबूत हूं कि कोई भी बात मेरे को डिस्टर्ब नहीं करे, हार्ट अटैक नहीं दे। नहीं तो जस्ट सिंपल मैसेज लोगों को हार्ट अटैक दे देता है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी बहुत सेंसिटिव रहती है। तो वो अंदर से स्ट्रांग रहेंगे तो हम हर प्रॉब्लम को फेस कर पाएंगे। आर रिसोर्सेस, अपने रिसोर्सेस ना होते हुए भी उसको क्रिएट करें, अपने में एनर्जी लाएं। और हम सभी ने देखा प्रीतिश और जया ने रिसोर्सेस ना होते हुए भी क्रिएट किए और लाइफ में आगे बढ़े, फिर से खड़े होते हैं, अब एनर्जी क्रिएट करेंगे, अब अपने में अंदर पावरफुल एनर्जी क्रिएट करेंगे। जय गणेशा। पावरफुल सॉन्ग है, बस दो मिनट लेंगे और खत्म करेंगे। वेरी गुड। लास्ट पर आते हैं। जीवन में आप विपत्ति आए तो आपत्ति मत करना, क्योंकि दूध फटने पर वही उदास होते हैं जिनको ये नहीं मालूम दूध फटने के बाद रसगुल्ला और पनीर मिलेगा। तो जब कभी भी प्रॉब्लम आए सोचना Something different is coming, something more is coming, and something higher is coming. Story keep your for last story, or finish karte.
A very beautiful story is coming ahead. एक लेडी रहती है, बहुत बीमार रहती है. सो डॉक्टर उनको कह देते हैं कि आप बस कुछ ही दिन के मेहमान हैं, फिर आपका हेल्थ इश्यू इतना है कि आप कुछ ही दिन के मेहमान रहेंगे. सो डॉक्टर बोलता है कि आपको जो आपकी आखिरी इच्छाएं हैं आप पूरी करिए. तो वो कहती है कि एक प्रीस्ट को बुलाइए. तो वो प्रीस्ट को बुलाते हैं. तो प्रीस्ट से कहती है कि मेरे को लेफ्ट हैंड में बाइबल होना है और राइट हैंड में फोर्क होना है. फोर्क खाते हैं, फोर्क होना है. सो क्यों बोलती है कि वो लेफ्ट राइट हैंड में फोर्क होना और लेफ्ट हैंड में बाइबल होना है. बाइबल होना तो समझ सकते हैं कि हम कि हाँ कि आखिरी समय में शी वॉन्ट्स टू बी इन अ रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, बट वाई फोर्क? किसी को मारने के लिए नहीं. सॉरी, ओके, शी माइट बी, आई डिडंट गेट यू. शी कैन कंटिन्यू ईटिंग इन द हेवन. ओके, एनी अदर गैसेस? She wants to kill her own self, the own negativity what she has having. Okay, so usme the reason when the priest asked her ki aap kyun fork lena chahte hain, to ek bahut hi sundar tarike se usne kaha ki jab bhi main dinner ya lunch karti thi to mere uncle hamesha kehte the ki kabhi plate mein fork chhodna mat, something is gonna come again, cake aayega, muffin aayega, kuch na kuch aayega khane ko, so kabhi fork niche mat rakho. सो उस बात को वो याद रखते हुए वो ये कहती है कि जब मैं मरूंगी तब मैं अपने लेफ्ट हैंड में बाइबल रखूंगी और राइट हैंड में फोर्क रखूंगी, क्योंकि आई नो देयर इज समथिंग बेटर गोइंग टू कम अहेड.
एंड करते हैं. गॉड हमारा एंटीवायरस की तरह है. जब हम गॉड को अपने अंदर पीसी में सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करते हैं, ही टेक केयर द प्रॉब्लम्स, स्कैन्स अवर प्रॉब्लम, रिमूव द वीकनेस और हमारी अपडेट करता रहता है. अपडेट पावर्स के रूप में करता है, जिसको हमें बटन को दबाना है सेव, वो पावर हमारे आसपास रहता है. जब खुदा मेरे आसपास है तो फिर कोई भी प्रॉब्लम हमें तंग नहीं करता. बैठे बैठे अभी करेंगे हम, तेरे आसपास खुदा है. फील करना कि मेरे आसपास ही कहीं ना कहीं वो खुदा है, प्रेजेंट है और मेरे को ताकत दे रहा है.
धुंधला जाए जो मंजिलें, एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता. तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान. तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है खुदा,
थैंक यू वेरी मच. मैं अपनी तरफ से आदरणीय मीरा बहन और उनकी टीम को बहुत बहुत थैंक्स. आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक्स. अपडेट करते रहिए, अपडेट करते रहिए और अपने वायरस को रिमूव करेंगे तो आगे बढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच. गुड, ब्यूटीफुल.